राष्ट्रपति की स्थिति पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति की बदलती भूमिका चेंजिंग रोल ऑफ द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। कुछ का विचार है कि राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं जिनके प्रयोग से वह तानाशाह बन सकता है, तथा कुछ का विचार है कि वह संवैधानिक अध्यक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमें राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की कानूनी स्थिति लीगल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी भी पक्ष से कम नहीं। डॉ के वी राव के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियों के निरीक्षण से पता चलता है कि हमारा संविधान एक शक्तिशाली कार्यपालिका की व्यवस्था करता है, संभवतः संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली। अध्यादेश जारी करना, आपातकाल की घोषणा करना, मौलिक अधिकारों तथा प्रांतों की स्वतंत्रता को निलंबित करने की शक्तियां इस कथन का समर्थन करती हैं। आर सर्वे ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट शोज क्लियर दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स ए वेरी पावरफुल एग्जेक्टिव परहैप्स द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड डैश विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी and suspending of fundamental rights and provincial autonomy, this statement is more than justified. Dr. K.V. Rao. संविधान की धारा 53 के अधीन समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सेनाओं का अध्यक्ष है तथा सभी उच्च नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पदच्युत भी करता है। पेज 143। वैधानिक क्षेत्र में राष्ट्रपति की स्थिति काफी प्रभावशाली प्रतीत होती है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है तथा समाप्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति देता है तथा धारा 123 के अधीन आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय बिल राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता तथा राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों के विभाजन संबंधी सुझाव देने के लिए वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कमीशन नियुक्त कर सकता है। न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है तथा सैनिक न्यायालयों द्वारा दी सजा तथा मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त संविधान की धारा 352 से धारा 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है जिनके प्रयोग से राष्ट्रपति संसद का सर्वाधिक शक्तिशाली अध्यक्ष बन जाता है। स्वतंत्र राष्ट्रपति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों तथा राष्ट्रपति के प्रशंसकों ने स्वतंत्र राष्ट्रपति के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट का प्रचार किया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद तथा K.M. मुंशी को इस सिद्धांत के संस्थापक माना जा सकता है। 1960 में भारतीय कानून संस्था इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का नई दिल्ली में शिलान्यास करते हुए डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान की कोई भी धारा ऐसी व्यवस्था नहीं करती कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इन सो मेनी वर्ड्स लेज डाउन दैट द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री के एम मुंशी ने इस विचार का समर्थन किया तथा कहा है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान की प्रत्येक पक्ष से रक्षा करने की शपथ ली जाती है। प्रेसिडेंट इज अंडर द ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट इन रोड्स फ्रॉम वट एवर क्वार्टर्स इट मे कम। K.M. मुंशी। इस कारण राष्ट्रीय संविधान की रक्षा के लिए हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। 1967 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव के समय यह विचार काफी महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री के सुब्बाराव ने स्पष्ट कहा था, यदि वह चुना गया तो वह एक स्वतंत्र तथा सुदृढ़ राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। If elected, he would be able to act like an independent and strong president, K. Subba Rao. भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने 1969 में अपने चुनाव के समय कहा था कि वह भगवान की भी रबड़ की मोहर बनना पसंद नहीं करेगा तथा संविधान की सीमाओं के अंदर एक प्रभावशाली भागीदार के रूप में कार्य करेगा. ही वुड नेवर लाइक टू बी ए रबर स्टैम्प इवन ऑफ गॉड एंड ही वुड बी एन एक्टिव पार्टनर विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वीवी गिरी. इस प्रकार श्री वीवी गिरी भी राष्ट्रपति द्वारा प्रभावशाली भूमिका निभाए जाने के पक्ष में थे. राष्ट्रपति की प्रभावशाली स्थिति के संबंध में विचार प्रकट करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पी बी मुखर्जी ने कहा था, भारत का राष्ट्रपति एक स्वतंत्र संस्था है जिसके स्वतंत्र अधिकार तथा कार्य हैं. इंडियन प्रेसिडेंट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विद इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट फंक्शंस, पीबी मुखर्जी. उपरलिखित विचार स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं अपितु अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र है. राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, रियल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति नाम मात्र के कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड से अधिक नहीं है, क्योंकि पेज 144 एक संसदीय सरकार की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. हम भली भांति जानते हैं कि भारत में इंग्लैंड की भांति संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाई गई है जिसमें मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है तथा राज्य प्रबंध की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, के पास होती है. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में संसद के निम्न सदन लोकसभा के समक्ष उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के सामने नहीं. दो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध. प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. संविधान में किए गए 42वें संशोधन के अनुसार धारा 74(1) को संशोधित करके स्पष्ट किया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तथा वह शक्तियों का प्रयोग करके उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा. देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल बी इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद सच एडवाइस, आर्टिकल 74(1). इस धारा ने राष्ट्रपति की स्वतंत्र इच्छा को सीमित कर दिया है तथा डॉ बी आर अम्बेडकर, श्री अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर तथा श्री बी एन राव आदि संवैधानिक विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को न मानना संविधान की उल्लंघना, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, जिसके लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाया जा सकेगा. डॉ बी आर अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था, राष्ट्रपति को वह स्थान ही प्राप्त है जो इंग्लैंड के संविधान में सम्राट को प्राप्त है. वह राज्य का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का नहीं. वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं करता. साधारणतया वह मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए प्रतिबद्ध होगा तथा उनके परामर्श के बिना ना ही उसके विरुद्ध वह कोई काम कर सकेगा. द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ही इज हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव. ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन. ही विल जनरली बी bound by the advice of ministers. He can do nothing contrary to the advice, nor can he do anything without their advice. Dr. B. R. Ambedkar. सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रपति की नाम मात्र स्थिति को स्वीकार किया है. UN राव बनाम इंदिरा गांधी के मुकदमे के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, हमारे संविधान के अनुसार इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया गया है जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद, जिसे विधान पालिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, के पास कार्यकारी तथा वैधानिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉइंग मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर एंड कॉन्सेंट्रेट्स इन इटसेल्फ वर्चुअल कंट्रोल ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। यू एन राव वर्सेज इंदिरा गांधी 1971। हमारा भूत का अनुभव आवर पास्ट एक्सपीरियंस। यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन तथा श्री बी वी गिरी नाम मात्र के अधिकारों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के इच्छुक थे, परंतु संवैधानिक विशेषज्ञों के परामर्श पर उन्हें नाम मात्र के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाने पर बाध्य होना पड़ा था। राष्ट्रपति श्री बी वी गिरी यद्यपि 1974 में हुई रेलवे कर्मचारियों के हड़ताल के प्रति सहानुभूति रखते थे, परंतु उन्होंने वही किया जो मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में श्री बी वी गिरी ने विचार प्रकट करते हुए कहा था, मैं सुझाव दे सकता हूं, तर्क दे सकता हूं, वाद विवाद कर सकता हूं, परंतु अंत में मुझे बिलों पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। आई कैन सुजेस्ट, आई कैन प्लीड, आई कैन आर्गू, बट अल्टीमेटली आई हैव टू साइन द बिल्स एंड ऑर्डिनेंसेस। वी वी गिरी। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बी डी जत्ती ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ना चाहते हुए भी 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया था। इसी प्रकार की घोषणा जारी करके 1980 में राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी ने 9 राज्यों की विधानसभाएं भंग की थी। पेज 145। राजीव जैल सिंह विवाद, राजीव जैल सिंह कॉन्ट्रोवर्सी। 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के अंतिम महीनों में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बीच संविधान की धारा 78 की व्याख्या के संबंध में विवाद खड़ा हो गया था। संविधान की धारा 78 ए के अधीन व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद में राज्य प्रबंध के संबंध में लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। धारा 78 बी राष्ट्रपति को राज्य प्रबंध तथा कानून निर्माण से संबंधित विषयों के बारे में जानने का अधिकार भी प्रदान करती है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ए टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। बी टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेजिडेंट मे कॉल फॉर आर्टिकल 78A एंड बी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का यह रोष था कि सरकार द्वारा उन्हें राज्य प्रबंध से संबंधित विषयों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को जितना विश्वास में लिया जाना चाहिए था उतना लिया नहीं जाता था, परंतु संवैधानिक विशेषज्ञों का विचार था कि राष्ट्रपति का जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सीमित है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज लिमिटेड। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच पैदा हुए इस विवाद ने भयानक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया था, परंतु इस सब का अर्थ यह नहीं ले लेना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद महत्वहीन तथा केवल रबड़ की मोहर या हस्ताक्षर करने वाली मशीन, रबर स्टैंप और साइनिंग मशीन वाला ही है। वह संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं में रहता हुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में विचार प्रकट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, परंतु उसके पद को महान अधिकारों तथा सम्मान के साथ जोड़ दिया है। वी हैव नॉट गिवन आर प्रेसिडेंट एनी रियल पावर, बट वी हैव मेड हिज पोजिशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है। प्रेसिडेंट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की धारा 60 के अधीन राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। एंड विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अतः यह देखना कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे राष्ट्रपति का कर्तव्य बन जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। प्रेसिडेंट इज सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई गई विधि उसको सारे राष्ट्र की एकता का प्रतीक बना देती है। संघीय संसद तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित चुनाव मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सक्रिय दल राजनीति से संबंध तोड़ लेता है तथा सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत के छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी सर्वसम्मति से चुने गए थे तथा उन्होंने 25 जुलाई 1977 को पद ग्रहण करते हुए कहा था, उसके इस महान पद के लिए सर्वसम्मति से चुनाव ने इस महान संस्था को राजनीतिक विवाद से ऊपर रखने के लिए एक नया दृष्टांत स्थापित किया है ताकि राष्ट्रपति देश की एकता बनाए रखने में भिन्न भिन्न दलों में एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकें। मैं इस सम्मानित समूह के समक्ष समस्त राष्ट्र जनता के सभी वर्गों तथा सब प्रकार के मत रखने वालों का प्रतिनिधि खड़ा हूं। हिज यूनैनिमस इलेक्शन टू द हाई ऑफिस हैज सेट ए न्यू प्रेसिडेंट फॉर कीपिंग दिस इंस्टीट्यूशन अबव पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सो द प्रेसिडेंट कैन सर्व एज ए लिंक बिटवीन डिफरेंट पार्टीज इन प्रिजर्विंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री। आई स्टैंड ऑन दिस पोडियम बिफोर दिस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर नेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल एंड शेड्स ऑफ ओपिनियन। श्री नीलम संजीवा रेड्डी। देश को संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट में से बाहर निकालना। टू स्टीयर द कंट्री आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। वरिष्ठ तथा योग्य राजनीतिज्ञ होने के कारण देश को संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट में से निकालना राष्ट्रपति का दायित्व होता है। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तथा प्रधानमंत्री चरण सिंह, 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह तथा मार्च 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के त्यागपत्रों के पश्चात देश में संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था तथा समय के राष्ट्रपतियों ने अपनी सूझबूझ से देश को इन स्थितियों में से बाहर निकाला था। जब कोई ऐसा संकट पैदा हो जाता है तो सारा राष्ट्र नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर देखता है। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति दलीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को मुख्य रखकर कार्य करता है। पेज 146। 11वीं तथा 12वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात लोकसभा किसी भी एक दल को सरकार बनाने के लिए उचित बहुमत प्राप्त न हो सकने के कारण अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा और राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा बड़ी सूझबूझ से हल निकाला गया था। विभिन्न दलों द्वारा मिलीजुली सरकार कोलिएशन गवर्नमेंट बनाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति को संवैधानिक औचित्य के पहरेदार की भूमिका निभानी पड़ती है और बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा 28 नवंबर 1997 को त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, परंतु राष्ट्रपति द्वारा 4 दिसंबर 1997 को 11वीं लोकसभा को भंग करके चुनाव किए जाने की घोषणा की गई थी। 17 अप्रैल 1999 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था, परंतु श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा अपने इस यत्न में असफल रहने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 26 अप्रैल 1999 को 12वीं लोकसभा को भंग करके नए चुनाव करवाए जाने का निर्णय किया गया था। राष्ट्रपति का अध्यादेशों पर स्वीकृति देने से इनकार। प्रेसिडेंट्स नो टू साइन ऑर्डिनेंसेस। मार्च 1996 को पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा राष्ट्रपति को दो अध्यादेशों पर स्वीकृति देने की प्रार्थना की गई थी। इनमें से एक अध्यादेश का संबंध दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण के साथ तथा दूसरे का संबंध चुनावों के दौरान प्रचार समय 3 सप्ताह से कम करके 2 सप्ताह करना था, परंतु राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा द्वारा इन दोनों अध्यादेशों पर अपनी स्वीकृति देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि 11वीं लोकसभा के चुनाव बहुत ही निकट हैं, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रमाण दिया गया था। 23 अगस्त 2002 को राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा चुनाव सुधारों से संबंधित अध्यादेश ऑर्डिनेंस ऑन पोल रिफॉर्म्स पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेजा गया था, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा अध्यादेश में कोई भी परिवर्तन करने से इनकार कर दिया गया था तथा राष्ट्रपति को मौलिक रूप में अध्यादेश जारी करना पड़ा था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में, प्रेसिडेंट एज एन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, को राष्ट्रपति की सलाहकार बनाया गया है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर समय समय प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर सलाह मशवरा भी देता है। यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा ही सलाह को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, परंतु फिर भी वह राष्ट्रपति द्वारा उसे दी गई सलाह पर विचार अवश्य करता है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रपति लोकतंत्रीय गठजोड़ की सरकार को 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, जबकि वर्ष 1999-2000 का वार्षिक बजट पास नहीं किया गया था। राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन को संदेह था कि देश का वार्षिक बजट पास न हो पाने के कारण देश का प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए श्री के आर नारायणन द्वारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को लोकसभा के भंग किए जाने से पहले वर्ष 1999-2000 का बजट पास करने के लिए कहा गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा विपक्षी दलों की सरकार को सहयोग देने के लिए भी कहा गया था और राष्ट्रपति के इन यत्नों के परिणाम स्वरूप 22 अप्रैल 1999 को वार्षिक बजट पास कर दिया गया था, जबकि 26 अप्रैल 1999 को वार्मी लोकसभा को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री को पद छोड़ने का परामर्श। प्रेसिडेंट्स एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर टू क्विट। अप्रैल-मई 1996 में हुए 11वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय को मुख्य रखकर राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंहा राव को पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा गया था। राष्ट्र का मार्गदर्शक, गाइड ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक और राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्र का मार्गदर्शक भी है और समय समय पर वह राष्ट्र के नाम प्रसारण किए गए संदेशों द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। पेज 147। साधारणतः 15 अगस्त या 26 जनवरी या कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेशों को रेडियो और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित करता है। ऐसा ही संदेश राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 14वीं लोकसभा के पहले दौर के चुनावों के आरंभ होने से पहले 18 अप्रैल 2004 को दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा भारत के लोगों को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करने के लिए कहा गया था, क्योंकि इस तरह वह आने वाले 5 वर्ष के लिए राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और इस तरह वे समृद्ध, सुरक्षित और महान भारत के निर्माण के लिए बीज बोएंगे। पिछले कुछ समय से संसद में बढ़ रही अनुशासनहीनता के कारण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 23 फरवरी 2016 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बोलते हुए कहा गया था, हमारी संसद लोगों की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतंत्रीय व्यवहार विचार विमर्श की मांग करता है, न कि गड़बड़ की या बाधा डालने की। संसद में सभी पक्षों द्वारा बढ़िया विचारों की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। आर पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट्स द सुप्रीम विल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक टेम्पर कॉल्स फॉर डिबेट एंड डिस्कशन एंड नॉट डिसरप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन। लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। प्रणब मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्वारा विकास की राजनीति अपनाने की सलाह। प्रेसिडेंट्स एडवाइस टू अडॉप्ट द पॉलिसीज ऑफ डिवेलपमेंट। 21 मार्च 2005 को संसद के वरिष्ठ सदस्यों को पुरस्कार देने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड के लिए संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित किए गए समारोह के अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने संसद के सदस्यों को राजनीतिक राजनीति पॉलिटिकल पॉलिटिक्स करने की अपेक्षा विकास की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट अपनाए जाने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि भारत को गरीबी, अज्ञानता और बेरोजगारी से मुक्त किए जाने की जरूरत है और इसके लिए विकास की राजनीति आवश्यक है। वास्तव में राष्ट्रपति झारखंड में सरकार निर्माण के मुद्दे को लेकर घटी घटनाओं से काफी दुखी थे। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दिए परामर्श को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। संविधान की धारा 74 आर्टिकल 74 के अधीन राष्ट्रपति उसको मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया परामर्श पुनः विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन को उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट लागू किए जाने की सिफारिश पर स्वीकृति देने के लिए कहा था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेजा गया था। राष्ट्रपति के सुझाव पर मंत्रिमंडल द्वारा 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति राज्य लागू किए जाने संबंधी सिफारिश वापस ले ली गई थी। इस तरह राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक के प्रयोग से देश को एक संवैधानिक संकट से बचा लिया गया था। राष्ट्रपति का मत था कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां संवैधानिक संकट लागू करने के लिए उचित नहीं है। इस तरह की दूसरी घटना सितंबर 1998 में हुई, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार में संवैधानिक आपातकाल लागू करने संबंधी भेजी गई सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेज दिया गया था। राष्ट्रपति की स्थिति से संबंधित ऊपर लिखित तथ्य सिद्ध करते हैं कि राष्ट्रपति केवल रबड़ की मोहर ही नहीं, अपितु वह स्थिति के अनुसार प्रभावशाली भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति की स्थिति और भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन ने अपनी पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है, राष्ट्रपति का पद संकटकालीन रोशनी की तरह है। जब कोई संकट आता है तो ये अपने आप जल जाती है और संकट काल के समाप्त होने पर ये अपने आप बुझ जाती है। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज लाइक एन इमरजेंसी लाइट। इट कम्स ऑन ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज ए क्राइसिस एंड गोज ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन द क्राइसिस पासेस। आर वेंकट रमन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। पेज 148। वॉल्टर बैगहॉट के अनुसार इंग्लैंड के सम्राट को तीन शक्तियां प्राप्त हैं। वे हैं परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार तथा चेतावनी देने का अधिकार। राइट टू एडवाइस, राइट टू एनकरेज एंड राइट टू वॉर्न। भारत के राष्ट्रपति को इन तीन शक्तियों के पश्चात जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू नो, भी प्राप्त है। दूसरे राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्री परिषद के दो मंत्रियों श्री सी सुब्रमण्यम और श्री ओवी अगरसन के त्याग पत्र को स्वीकार न करने का परामर्श दिया गया और सावधान किया गया कि प्रधानमंत्री का व्यवहार देश की एकता को खतरे में डाल सकता है। स्मरण रहे, उपरोक्त दोनों मंत्रियों ने तमिलनाडु में डीएमके पार्टी द्वारा भाषा के प्रश्न को लेकर चलाए गए आंदोलन का केंद्रीय सरकार द्वारा संतोषजनक समाधान न ढूंढने पर रोष में त्यागपत्र दिए थे। राजनीतिक हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता, प्रेफरेंस टू नेशनल इंटरेस्ट्स ओवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। प्रायः देखने में आता है कि प्रधानमंत्री कई बार राष्ट्रीय हितों पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने के लिए विवश होता है, क्योंकि उसे सत्ता में बने रहने के लिए कई प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं। विशेषतः भारत में मिलीजुली सरकारों कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर आरंभ होने के बाद प्रधानमंत्री को सत्ता में भागीदार दलों को खुश रखने के लिए कुछ करना पड़ता है, परंतु इन सब के विपरीत राष्ट्रपति ऐसे बंधनों से मुक्त होता है। वह राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, न कि किसी विशेष दल का। इसलिए वह सदैव राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और इस दिशा में राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निभाई गई भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है। 14वीं लोकसभा के चुनावों से पहले उनके द्वारा लोगों को अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करने और अपने मताधिकार का सकारात्मक प्रयोग, पॉजिटिव यूज ऑफ राइट टू वोट करने का निमंत्रण दिया गया था। इसी तरह उनके द्वारा संसद के सदस्यों को विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मूल्यों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखते थे और राजनीति को सेवा का साधन मानते थे। 30 मई 2006 को राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लाभ के पदों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित पास किया गया बिल पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दिया गया था। स्मरण रहे, मई 2006 में संसद द्वारा एक बिल द्वारा 56 पदों को लाभ के पद की सीमा से बाहर किया गया था। इस बिल के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दो आपत्तियां उठाई गई थी। पहला, दिशा निर्देश ऐसे होने चाहिए जिन्हें सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में समान रूप में लागू किया जा सके। दूसरा, बिल को पिछली तिथि अर्थात 1959 से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रपति का निजी व्यक्तित्व और उसकी भूमिका, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज रोल। राष्ट्रपति की भूमिका और उसकी स्थिति उसके निजी व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन ने जुलाई 1997 में राष्ट्रपति का पद संभालने के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति, वर्किंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हुए कई नई राहें स्थापित की हैं, जैसे एक, जुलाई 1998 में टेलीविजन के प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देने वाले वे पहले राष्ट्रपति थे। दो, जून 1998 में उनके द्वारा प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को चीन की अनावश्यक आलोचना करने से रोकने के लिए कहा गया था। तीन, जून 1998 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण संबंधी मिल रही रिपोर्टों के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की और इस संबंध में सरकार को एक पत्र लिखा। फरवरी 1998 में हुए 12वीं लोकसभा के चुनावों में उन्होंने एक साधारण नागरिक की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस तरह करने वाले वे पहले राष्ट्रपति हैं। पांच, फरवरी 1998 में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी को उनके गलत व्यवहार के कारण पद से अलग करने का सुझाव दिया। पेज 149। 6 अक्टूबर 1997 में राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल को उत्तर प्रदेश में संवैधानिक आपातकाल लागू करने संबंधी भेजी गई सिफारिश पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया था। 7 सितंबर 1998 में राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल को बिहार में संवैधानिक आपातकाल लागू करने संबंधी भेजी गई सिफारिश पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया था। 8 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अपनी राय प्रकट करते हुए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ संबंध रखने योग्य उम्मीदवारों को ध्यान रखे जाने के लिए कहा गया था। 9 संविधान के पुनर्निरीक्षण संबंधी वाजपेयी सरकार के निर्णय पर अपनी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 27 जनवरी 2000 को सरकार को संविधान की मौलिक विचारधारा और संविधान के मौलिक ढांचे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी। 10. चुनाव आयोग के गोल्डन जुबली समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा राजनीतिक दलों को अपराध जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों को चुनाव के लिए टिकट न देने और स्त्रियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की सलाह दी गई थी। निष्कर्ष कंक्लूजन। ऊपर लिखित विचारों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक राष्ट्रपति की भूमिका में अनेक परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों का देश की राजनीति में आए परिवर्तनों के साथ गहरा संबंध है। 1989 तक के राष्ट्रपतियों द्वारा लगभग एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका तक ही स्वयं को सीमित रखा गया था, परंतु 1989 के बाद भारत में मिश्रित सरकारों का दौर आरंभ हुआ। आम चुनावों में कोई भी एक दल सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा और चुनावों के बाद राष्ट्रपतियों को बहुत सूझबूझ से काम लेकर सरकारों का निर्माण करना पड़ा और यह स्थिति आज तक जारी है। इसके अतिरिक्त सत्ता के लालच ने देश में से मूल्यों पर आधारित राजनीति वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को लगभग समाप्त कर दिया है। आज सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दल कई प्रकार के अव्यवहारिक और असैद्धांतिक समझौते करते हैं, सदस्यों के साथ सौदेबाजी की जाती है और फरवरी 2005 में हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव और उनके बाद की घटनाएं इस तथ्य का प्रमाण है। मार्च अप्रैल 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनावों के बाद भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ा था। आज राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर वाली नहीं अपितु सक्रिय राष्ट्रपति एक्टिव प्रेसिडेंट की भूमिका निभानी पड़ रही है। वह दलीय हितों से ऊपर होता है और राष्ट्र के हितों को मुख्य रखकर कार्य करता है। वह संवैधानिक औचित्य का प्रहरी होता है और देखता है कि सरकार संविधान द्वारा लिखित सीमाओं में रहकर काम करे।